जुआ जो है वो बजायर ऐसा लगता है कि एक खेल है, लेकिन उसमें लाजमन एक शख्स जो है उसको कोई नुकसान होता है, इस वजह से कुरान ने कैटेगोरिकली उसको हराम करार दे दिया है। सवाल उनका ये है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी ऐसा ही होता है कि मैं देखता हूँ कि एक शेयर है उसकी प्राइस नीचे हो रही है, मैं उसे ख़रीद लेता हूँ और यकदम से वो ऊपर हो जाती है तो मैं उसे बेच देता हूँ, या इसका उलट भी हो जाता है समटाइम। तो ऐसा भी होता है कि इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मैं बिल्कुल सड़क पर भी आ जाता हूँ, मेरा पूरा सरमाया डूब जाता है। तो ये भी जुए की ही एक शक्ल बन रही है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज को हमारे उलमा हराम नहीं करार देते, उसकी क्या वजह है?
ये तो हर कारोबार में होता है। आप बाजार में बैठते हैं, सौदा खरीद के लाते हैं, कोई फसल बोते हैं, हो सकता है कि आपको बड़ा शदीद नुकसान हो जाए,
लेकिन उसमें तो आप मेहनत करते हैं ना, इसमें तो मेहनत कुछ नहीं है। आपने एक बोली देखी, आपने ट्रेंड देखा, ये पैसे आपने कह दिया कि ले लो, उसके बाद चार दिन बाद पता चला।
मेहनत जो है वो जिस्मानी भी होती है, मेहनत जहनी भी होती है। यानी आप किसी चीज़ के बारे में एक अंदाज़ा लगाते हैं, आप ये समझते हैं कि फ़लाँ चीज़ की कीमत बढ़ रही है, दर हकीकत ये जितनी बड़ी कंपनियाँ काम कर रही हैं उन्हीं का एक तवाज़ुन है जिसके तहत आप भी अपना काम कर रहे होते हैं। इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं वो हर कारोबार में पेश आती है। आप देखिए कि आपने ख्याल किया कि इस साल आलू बो देने चाहिए, बहुत बड़ी तादाद में अपनी फसल काश्त कर दी, मालूम हुआ कि इतनी तादाद में आलू पैदा हो गए हैं कि कोई ख़रीदने वाला ही नहीं है, बाज़ुकात फेंकने पड़ जाते हैं। तो इसलिए एक चीज़ ये है कि आप किसी मैदान में उतरे, आपने उतर कर वहाँ पर कोई ज़हनी, कोई फ़िक्री, कोई इल्मी नौइयत का काम किया, उसमें नुकसान भी होता है, उसमें फ़ायदा भी होता है। तो हर चीज़ को तो हम जुआ नहीं करार दे सकते। ताहम अगर किसी जगह ये महसूस हो कि ऐसी सूरत पैदा हो रही है कि जो चीज़ जुए की हुरमत का बायस बनती है वो आपके किसी कारोबार में भी दर आई है, तो उसके बारे में कानून साजी की जा सकती है। आप ये जानते हैं कि बाज़ औक़ात अच्छी हुकूमतें ये देखती रहती हैं कि किसी मामले से कोई इज्तिमाई नुकसान तो नहीं हो रहा, या लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नशेब व फराज तो नहीं पैदा हो रहे। तो ये स्टॉक एक्सचेंज के पहले कारोबार को समझना चाहिए, यानी जो कारोबार आपके यहाँ पूरे मुल्क में हो रहे होते हैं दर हकीकत वो वहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं और उनके अंदर लोगों की एक पार्टिसिपेशन होती है। तो इस वजह से उसके ऊपर आप जुए का इतलाक नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में ये ख्याल होता है कि ये लोगों के लिए नुकसान का बायस बन जाएंगी। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर आप हदीसों का मुताला करें, तो मदीने की मंडी में बहुत से ऐसे मामलात हो रहे थे जिनसे रोक दिया। वजह क्या है? उसमें भी वही चीज़ है, या उनमें ज़रर था या गरर था, यानी या किसी एक को लाजमी तौर पर नुकसान हो रहा था या किसी को धोखा दिया जा रहा था। आप देखिए यहाँ तक इसमें किया कि बहुत से लोग थे जो मंडी से बाहर जाकर काफिला आ रहा है वहीं उसको रोकते और वहीं बहताव शुरू कर देते थे। तो आपने फरमाया कि ये भी ना किया करो, इसलिए कि वो लोग बाहर से आए हैं, उन्हें अभी ये अंदाज़ा नहीं कि मंडी में भाव क्या है, और यहाँ के जो लोग हैं उनको भी पूरा मौका नहीं मिला कि वो ख़रीदो फरोख्त में हिस्सा ले सकें। आपके इलम में है कि सैयदना फारूक के बारे में ये बताया जाता है कि एक मौके पर किसी शख्स ने अपने घर में खजूरों का तोहफा लेकर कुछ खा लिया और कुछ आके ज़रा बड़ा टोकरा पहुँच गया होगा, मंडी में रख दिया और जिसको आप कहते हैं ना कि पैसे धेले में बेचना शुरू कर दिए। उनको इत्तला मिली तो रोका उन्होंने आगे, उन्होंने कहा कि आज बहुत से लोग सुबह ख़रीद के लाए होंगे, उससे मंडी का एक भाव बना होगा, आपके पास किसी दोस्त ने एक टोकरा भेज दिया खजूरों का, आपने आके आज गरीबों के साथ क्या कर डाला है। तो ये जितने पहलू हैं उन सब का लिहाज करके रियासतें, हुकूमतें, इदारे कानून साजी करते रहते हैं। ताहम इसको जुआ करार नहीं दिया जा सकता। वहाँ आप एक कारोबार के उतार चढ़ाव में खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, जुए में कोई खरीदो फरोख्त नहीं हो रही होती।
आपके इस जवाब से कुछ मज़ीद उलझने पैदा हो गई हैं, जावेद साहब इसको ज़रा वाजे कीजिएगा। पहली बात तो ये कि मैंने आपसे जब ये कहा कि वहाँ पर जो है वो कोई मेहनत नहीं हो रही होती, तो आपने कहा मेहनत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, जहनी भी होती है। अगर जहनी मेहनत देखा जाए तो जुए की भी बाज़ शक्ल ऐसी हैं जिसमें मुझे जहनी मेहनत होती है, मैं जहनी तौर पर सोचता हूँ कि मुझे कौन सा चाल चलनी है ताकि मैं दूसरे को जो है वो हरा सकूं, ज़हनी तौर पर सोच रहा होता हूं। एक बात, दूसरी बात ये कि अगर इस तरह से देखा जाए तो फिर ये जो खेलों के मैदान में जो सट्टा लगाया जाता है उस सट्टे में भी ज़हनी मेहनत होती है। मैं कहता हूं कि जी अब जो गेंद आएगी उसके अंदर ये छक्का लगेगा या फलाना होगा और मैं उसमें सट्टे में जीतता हूं, मैं ज़हनी तौर पर सोचता हूं, एनालाइज करता हूं। तो इस तरह से तो देखा जाएगा तो ये एक ऐसा लगेगा।
आपने दो चीज़ों को मिला दिया बहुत माजरत के साथ। देखिए एक चीज़ ये है कि कोई माशी सरगर्मी हो रही है,
ठीक,
یعنی کوئی پیداوار کی جا رہی ہے، کوئی خرید و فروخت کی جا رہی ہے، لوگوں کی خدمت کا کوئی کام کیا جا رہا ہے، اس میں یا جسمانی محنت ہو رہی ہے یا ذہنی محنت ہو رہی ہے، وہ اپنی ذات میں بیع و شراء ہے، خرید و فروخت ہے. یہاں جو ذہنی محنت آپ کر رہے ہیں وہ کھیل کھیلنے میں کر رہے ہیں. اسی وجہ سے اگر آپ کرکٹ کے میچ پر بھی روپیہ لگائیں گے تو اس کو بھی جوا ہی کہا جائے گا. یعنی یہ نوعیت بالکل مختلف ہے. کام کیا جو آپ کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، آپ کوئی چیز پیدا کر رہے ہیں، آپ سوسائٹی کی خدمت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہاں پہ کھیل کھیل رہے ہیں. کھیل کو آپ نے دوسرے کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا.
ٹھیک ٹھیک،
یہ دو چیزیں بالکل الگ ہیں.
صحیح. اچھا، دوسری بات آپ نے جو ابھی فرمائی، آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جب وہ آتے تھے، مال و اسباب لے کر قافلے آتے تھے، تو ان کو راستے میں ہی روک لیتے تھے اور ان سے بھاؤ تاؤ کر لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع فرمایا. اس کی آج جو شکل بن رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک ہول سیلر مارکیٹ ہوتی ہیں جو کہ شہر سے کبھی دور بھی ہوتی ہیں، اور ایک ریٹیل مارکیٹس ہوتی ہیں. تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس چیز کا اگر میں استنباط کروں تو ہول سیلر مارکیٹ میں جا کر سستے داموں میں نہیں خرید سکتا کوئی چیز جب تک کہ وہ ریٹیل مارکیٹ میں نہ آ جائے. یہ بات درست ہے کیا؟
نہیں، یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو ریٹیل کی مارکیٹ ہے اس میں ایک آدمی خدمت انجام دیتا ہے. میں آپ سب کے سب کسی بڑی مارکیٹ میں جا کے کپڑا خریدنے یا کوئی چیز فروخت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. وہ ہمارے محلے تک لے آتا ہے،
ٹھیک ہے،
قریبی بازار تک لے آتا ہے. تو یہ سہولت باہم پہنچاتا ہے،
ٹھیک ہے
آدمی. اس وجہ سے اس پر کیا اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی دھوکہ دینے کا عمل نہیں ہے. وہ ایک دھوکہ دینے کی صورت بن جاتی تھی. اس کی مثال میں نے اس لیے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معاملات پیش آئے تو آپ نے اسی اصول پر ان کو روکا. تو اس اصول کو وہاں سے لے لیجئے. ہمارے ہاں بھی اگر کوئی معاملہ پیش آئے گا، ریٹیل کے کاروبار میں بھی مثلاً، یا تھوک کے کاروبار میں بھی، یہ معلوم ہوگا کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے یا نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو ضرور روکنا چاہیے. کیونکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں اخلاقی قباحت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی کسی کا مال بھی آپس میں آپ باطل طریقوں سے نہیں کھائیں گے. تو اگر اس میں کوئی ضرر ہے، یعنی نقصان پہنچانا مقصود ہے، دھوکہ دینا مقصود ہے، کسی کو فریب میں مبتلا کر کے اس سے فائدہ اٹھانا مقصود ہے، تو اس سے روکیں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ صورتیں صرف رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آتی تھیں، آج بھی پیش آتی ہیں. اچھا، اس وقت کی تمدنی ضروریات کے لحاظ سے پیش آتی تھیں، آج کے زمانے میں آج کے لحاظ سے پیش آتی ہیں.
ٹھیک ہے.
تو ہر چیز کو اس کے اصول کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے گا.
ٹھیک ہے.